Eccoci.
Jai Radha Madhava
Krishna
Om Ajnana Te
आप सब भक्तों को हम आज गौर पूर्णिमा के दूसरे दिन के उच्च समय स्वागत करते हैं। आज हम चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा के संबंध में कुछ हम चर्चा करने वाले थे। तो चैतन्य महाप्रभु की इतने शिक्षाएं हैं, लेकिन उनके शिक्षाओं में से जो बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा जो चैतन्य महाप्रभु ने दी थी सनातन गोस्वामी को, उसमें से उन कुछ शिक्षाओं के संबंध में आज हम चर्चा करेंगे। आपको मालूम है सनातन गोस्वामी नवाब हुसैन शाह के सभा में वो बहुत बड़े मिनिस्टर थे। उसके बाद जब चैतन्य महाप्रभु को आकर मिलते हैं, चैतन्य महाप्रभु के मिशन में ज्वाइन करते समय, तब ये श्लोक बताते हैं चैतन्य महाप्रभु को। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, सब लोग बोले जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। सनातन स्वामी के प्रश्न ऐसे हैं, नीच जाति नीच संगी पतित अधम कुविषय कुपे पड़ी कुणाइनु जन्म। सनातन गोस्वामी सेड, आई वॉज बॉर्न इन लो फैमिली एंड माई एसोसिएट्स आर ऑल लो क्लास मैन, आई माई सेल्फ आई एम फॉलन एंड आई एम द लोएस्ट ऑफ मैन, इन डीड आई हैव पास्ड माई होल लाइफ फॉलन इन द वेल ऑफ सिंफुल मेटीरियलिज्म। ऐसे बता रहे हैं सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को कि नीच जाति नीच संगी, मेरा जन्म बहुत नीच परिवार में हुआ और मेरे सब संगी जो होते हैं वो सब पतित अधम लोग हैं, ऐसे बताते हैं। अच्छा, आपको मालूम होगा सनातन गोस्वामी का जन्म हुआ सारस ब्राह्मण परिवार में, उच्च कुल में जन्म हुआ। तो ऐसे क्यों बोलते हैं अपने बारे में? तो प्रभु जी तात्पर्य में बताते हैं कि सनातन गोस्वामी को नवाब हुसैन शाह के कोर्ट में मिनिस्टर बनकर उनको मुसलमान नाम भी दिया गया था। इस तरह उन्होंने काम किया उसके साथ। तो और उसके सब संगी गोमांस खाने वाले थे, इस तरह के नीच संगी थे। इसलिए सनातन गोस्वामी ने अपने को भी बहुत नीच माना। इसके कारण सनातन गोस्वामी क्यों इस तरह की धंधा किया उनके साथ, उसका भी ये कारण है। ऐसा बताया जाता है कि एक बार नवाब हुसैन शाह के एक मिनिस्टर ने उसको बताया कि आपके सरकारी चीजों को करने के लिए दो बुद्धिमान ब्राह्मण हैं, कर्नाटका के थे वो, लेकिन बंगाल में सेटल हुए थे वो। तो उन्होंने बोला कि ये दो रूप और सनातन जो हैं ये आपके लिए बहुत अच्छा मिनिस्टर बनेंगे, बहुत बुद्धिमान लोग हैं। कभी कभी आप देखते हैं बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के अंडर में कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, उनको समझाते हैं कैसे पैसा को बचाव करना। तो इस तरह राजा ने सोचा कि ये मेरे काम करने के लिए बहुत बुद्धिमान लोग चाहिए। तो दोनों मिल गए थे। तो उनको बुलाकर राजा ने बोला था कि अगर आप लोग ये धंधा नहीं करेंगे तो मैं वैष्णवों को तंग करूंगा, उनको तकलीफ दूंगा। तो इसको सुनकर रूप सनातन ने ये नौकरी सरकारी नौकरी स्वीकार ली, इसलिए वो कर रहे थे ऐसे। फिर भी अभी बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के पास, नीच जाति नीच संगी है, ऐसे बता रहे हैं पतित अधमा। तो हम पतित लोगों की नेतृत्व में काम करने से हम भी पतित बन जाते हैं। आजकल आधुनिक दुनिया में कितने नास्तिक हैं, उनके अंडर में रहकर काम करना होता है भक्तों को भी कभी कभी। तो सनातन धर्म में अपने को खंडन करते हैं, कारण क्या है, ऐसे आजीवन हम नास्तिकों के नीचे हम काम करना सही नहीं है, ये समझने के लिए। हर एक भक्त जो है कृष्ण के भक्त को ये अभिलाष चाहिए हृदय में कि ऐसे नास्तिक लोगों की मैं क्यों सेवा करूं, मैं कृष्ण के लिए सीधा सेवा करूं, इसलिए वो अपने को बहुत अधम मानते हैं इसे। तो बताते हैं आगे, अपना रहित हित किचु नहीं जानी, ग्राम्य व्यवहारे पंडित तई सत्यमानी। हे भगवान, मुझे मालूम नहीं है मेरे लिए हितकारक क्या है हानिकारक क्या है, मुझे मालूम नहीं। और जनसाधारण सोचता है कि मैं बहुत बड़ा पढ़ा लिखा पंडित हूं और मैं भी उनके उनके जो भी बोलते हैं उसको मैं मान लेता हूं, ऐसे बताता है। लेकिन मुझे कुछ मालूम नहीं है, मुझे मैं मूर्ख हूं, ऐसे बताता है। तो रूप और सनातन इतने पढ़े लिखे थे, संस्कृत में ही नहीं लेकिन पर्शियन में, अरबियन भाषा में और बहुत कुछ भाषाओं में, और उन्होंने श्रीमद् भागवत का भी अध्ययन की थी। तो उनके घर में एक गुप्त वृंदावन था, उन्होंने वृंदावन बनाया था जिसमें राधा कुंड, श्याम कुंड, गोवर्धन इत्यादि वृंदावन में जो भी हैं वो सब का एक छोटा मॉडल बनाया था। और वो लोग इतने महान भक्त थे कृष्ण के पहले से, फिर भी वो बोलते हैं कि मुझे हितकारक क्या है मुझे मालूम नहीं है, इस तरह बताते हैं। के आमे के ने आमा यारे तापत्राय, यह नहीं जानी के मन हित होय। हे भगवान, मुझे मालूम नहीं कि मैं कौन हूं, ये त्रिविध ताप मुझे क्यों तकलीफ देते हैं, इसका कारण क्या है। तो बताते हैं आगे कि मुझे कैसे जीवन के लक्ष्य के बारे में पूछताछ करना चाहिए, ये मुझे मालूम नहीं है, इसलिए कृपया आप मेरे ऊपर कृपा बरसाइए, ऐसे विनती करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने जवाब दिए, क्या जवाब दिए उन्होंने, प्रभु का है कृष्ण कृपा तुमाते पूर्ण है, तुम्हारे ऊपर कृष्ण कृपा पूर्ण है, ऐसे बताते हैं। सब तत्व जान तुम्हार ना ही तापत्रय, तुमको सब तत्व मालूम है सनातन, और इसके कारण तुम तीनों त्रिविध ताप से तुम मुक्त हो, आध्यात्मिक अधिभौतिक अधिदैविक क्लेशों से तुम मुक्त हो। फिर भी बताते हैं, कृष्ण शक्ति धारा तुमी जान तत्व भाव, जानी दार्ढ्य लागी पुछे साधु रस्व भाव। ये साधु का स्वभाव है कि अगर उनको जवाब मालूम भी है फिर भी वो अपने जीवन में सतर्क बनने के लिए प्रश्न पूछते हैं, इस तरह बताते हैं। जानने के बाद भी कभी कभी दूसरों की भलाई के लिए पूछते हैं, कभी कभी खुद को और भी गंभीर बनाने के लिए भक्तिमय जीवन में ऐसे प्रश्न पूछते हैं। इस तरह महाप्रभु ने बोला कि तुम इसलिए तुम मुझे ऐसे प्रश्न पूछ रहे हो, तुमको सब कुछ मालूम है। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु अनेक श्लोकों में सनातन गोस्वामी को शिक्षा दी, उनमें से पहले 8 श्लोक जो आते हैं उसमें सारे कृष्ण भावनामृत संघ का जो बुनियाद है वो तत्व इन 8 श्लोकों में आते हैं। पहले श्लोक में चैतन्य महाप्रभु उनको सत्य को बताते हैं। जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश। ये परम सत्य के संबंध में जो ये सत्य बताते हैं चैतन्य महाप्रभु इन श्लोकों में बताते हैं कि जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास, जीवात्मा का असली स्थिति क्या है, वो कृष्ण का नित्य दास है। तो मैं प्रभुपाद जी के एक प्रवचन सुन रहा था जिसमें प्रभुपाद जी समझाते हैं बहुत अच्छी तरीके से इसी श्लोक को। वो बताते हैं धर्म शब्द का मतलब क्या है। अनेक लोग सोचते हैं कि धर्म का मतलब है कुछ विश्वास, कुछ इस मुसलमान धर्म, हिंदू धर्म, कृष्ण धर्म, इस तरह का कुछ धर्म को धर्म लोग मानते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं धर्म का मतलब इस तरह का धर्म नहीं है। लेकिन धर्म क्या है? धर्म का मतलब है एक ऑक्यूपेशन बोलते हैं, एक धंधा है। जैसे उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी, कोई कारपेंटर है, कारपेंटर क्या करता है? वो लकड़ी को लेकर काम करता है कोई, नहीं तो कोई लॉयर है, वो कोर्ट में काम करता है। तो इस तरह का धंधा जो होता है उसको धर्म बोला गया है। और धर्म ऐसा चीज होता है एक व्यक्ति उसको छोड़कर दूसरा नहीं कर सकता है। उदाहरण के लिए अगर कोई इंजीनियर हो, क्या वो किसी का सर्जरी कर सकता है? अगर किसी को ऑपरेशन करना है पेट में, क्या वो इंजीनियर अपने टूल्स जो होता है इंजीनियरिंग टूल्स उसको लेके आकर ऑपरेशन कर सकता है? वो नहीं कर सकता है, क्योंकि इंजीनियर इंजीनियर का काम ही कर सकता है और डॉक्टर डॉक्टर का काम करता है, कारपेंटर लॉयर ये सब लोग अपने अपने काम करते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि धर्म ऐसा चीज है उसको कोई व्यक्ति छोड़ नहीं सकता और दूसरा धंधा भी नहीं कर सकता है। और धर्म ऐसा चीज है जिसको करके ही एक व्यक्ति जीवित रह सकता है, ऐसे वो बताते हैं। और इसमें बताते हैं कि अलग अलग स्तर पर धर्म होता है। उदाहरण के लिए अभी शरीर है हमारा, तो नहाना धोना, भोजन नहीं तो प्रसाद पाना, स्वीकारना, मलमूत्र करना, ये सब शरीर का धर्म है, क्योंकि इन चीजों को किए बिना कोई मनुष्य इंसान जी नहीं सकता है, ये शरीर का धर्म है, ऐसे बताते हैं। इस तरह मन का भी धर्म है। मन का धर्म क्या है? संकल्प विकल्प बोलते हैं, चीजों को स्वीकारना, उनको नकारना, किसी चीज के बारे में चिंतन करते रहना, चिंता करते रहना, ये सब मन का है। और बुद्धि का भी धर्म है, बताते हैं बुद्धि का धर्म क्या है। निर्णय लेना और किसी चीज की मूल्य को स्थापन करना, ये सब चीज बुद्धि करता है। तो धर्म अलग अलग स्तर पर होता है इस तरह। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कर्म योगी जो होते हैं वो क्या करते हैं? शरीर से काम करते हैं। ज्ञान योगी क्या करते हैं? मन से, अपने मन को लगाकर वो परम सत्य को समझने के लिए खोज करते हैं ज्ञान योगी। अष्टांग योगी क्या करते हैं? अपनी बुद्धि को एकाग्रत करके ध्यान करते हैं। लेकिन भक्त योगी जो होते हैं वो आत्मा को भगवान की सेवा में लगाते हैं। इस तरह शरीर, मन, बुद्धि, ये सब के स्तर पर जो धर्म होता है वो सब क्षणभंगुर है, ऐसे बताते हैं, वो सब शाश्वत नहीं है, ऐसे धर्म। उदाहरण के लिए अभी हम सब लोग बोलते हैं कि हम भारतवासी हैं। अगर हम सोचते हैं कि हम भारतवासी हैं तुरंत हमें एक धर्म खड़ा हो जाता है। क्या है धर्म? हम भारत के प्रजा होने के कारण हम एक भारत के एक पैट्रियट, व्हाट इज अ पैट्रियट, यानी पैट्रियट देश प्रेमी। हाँ, कोई कोई देश प्रेमी बनते हैं, अपने देश के लिए काम करते हैं वो, क्योंकि वो अपने शरीर को देश से पहचानते हैं, है ना। कोई कोई व्यक्ति है अपने जाति से पहचानते हैं, कोई कोई अगर ब्राह्मण हो तो सोचते हैं कि कोई भी ब्राह्मण हो उनसे पहचानते हैं वो। हाँ, आप भी ब्राह्मण है, मैं भी ब्राह्मण हूँ, आप नॉर्थ इंडिया ब्राह्मण है, मैं साउथ इंडियन ब्राह्मण हूँ, तो सोचते हैं कि हम दोनों एक ही जाति के हैं, ऐसे ऐसे स्वजातीय है, ऐसे सोचते हैं। नहीं तो कोई कोई अपने कुल, अपने जाति, अपने देश, उससे जिन जिनका जन्म हुआ है उधर पैदा हुआ है उन लोगों से पहचानते हैं ऐसे। तो उतना ही धर्म खड़े हो जाते हैं उसके अनुसार, जितना हम शरीर से पहचानते हैं इतने धर्म को हमें पालन करना होता है। अगर उदाहरण के लिए अगर आप अपने जाति से पहचानते हो तो आपके जाति के अंडर में जिनका भी शादी होता है, जिनका जिनके घरों में कुछ उत्सव होता है उधर जाना पड़ता है आपको, है ना। अगर हम अपने परिवार वाले के साथ हम पहचानते हैं तो इतने कभी कभी किसी किसी लोगों का इतने कजिन ब्रदर कजिन सिस्टर होते हैं, 50 होते हैं ऐसे, है? सबके घर में जब कुछ फेस्टिवल होता है सब जाते हैं ऐसे। तो प्रभु जी बताते हैं इस तरह अनेक भौतिक धर्म होते हैं। तो कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। इसका मतलब क्या है? इस तरह शारीरिक, मानसिक और बुद्धि के स्तर पर जो भी धर्म मैंने मैंने पहले बताया वो सब कुछ छोड़ दो, भगवान बताते हैं, क्योंकि तुम आत्मा हो, तुम मेरे सेवा में लगना तुम्हारे लिए स्वाभाविक है, इस तरह भगवान बताते हैं। तो प्रभु जी बताते हैं कि धर्म जो होता है, हर एक रिलीजन जो होता है, जैसे क्रिश्चियनिटी है, मुसलमानों का धर्म है, हिंदुओं का धर्म है, वो धर्म अच्छा चीजों को सिखाता है शुरुआत में। उदाहरण के लिए प्रभु जी बोलते हैं कि जानवर और मनुष्य में एक ही भिन्नता है, क्या है, मनुष्य धर्म अपनाता है, जानवर अपनाते नहीं। आप स्लम में भी जाकर देखिए, आप देखेंगे कभी कभी उधर भी एक गोपुरम होता है, कुछ छोटा मंदिर होता है उधर भी, कहीं भी देखो मनुष्य जिधर है उधर किसी न किसी देवता की पूजा है उधर। आप सिर्फ देखेंगे जानवरों के बीच में कुछ ऐसा पूजा नहीं है, जानवर मंदिर बनते नहीं, पूजा करते नहीं ऐसे। अगर कोई मनुष्य बोलता है कि हम भी मंदिर बांधते नहीं है, हम भी पूजा नहीं करते, तो उनको जानवरों से गिना जा सकता है, उनको भी ऐसे। इसलिए धर्म का मतलब, इसलिए ये बताते हैं चाणक्य पंडित एक महत्वपूर्ण श्लोक, ये बताते हैं, येषां न विद्या न तपो न दानो न चापि शीलो न गुणो न धर्मः ते ते मर्त्य लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। वो बताते हैं जिनके जीवन में येषां न विद्या, जिनको ये राज्य विद्या, आत्मा और परमात्मा और उनके संबंध की विद्या जिन्होंने नहीं सीखा है, ना तपो, जिन्होंने तपस्या नहीं की है भगवान को प्राप्त करने के लिए, दान नहीं दिया है, उनके अंदर शीलता नहीं है, सदाचार नहीं है, उनके अंदर गुण भी नहीं है, दिव्य गुण, और धर्म नहीं करते हैं, इनको मनुष्यों में गिना नहीं जा सकता है, बोलते हैं। थे मर्त्य लोके भूमि बार भूता, भूमि के बार हैं वो, और मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति बोलते हैं, मनुष्य के रूप में हैं लेकिन वो मृग हैं, जानवर हैं बताते हैं। आप भागवत में पढ़ेंगे मनुष्यों को भी एक ही शब्द से संबोधित किया जाता है, वो शब्द क्या है, जंतु। अब जानवर को भी जंतु बोला गया है, मनुष्य को भी जंतु बोला गया है, जंतु मीन्स क्रीचर, जंतुर्वैभव एतस्मिन् याम याम योनिर् अनुम्रजेत तस्यां तस्यां, ऐसे एक श्लोक आता है भागवत में, जंतु जंतु को मनुष्य को जंतु बोला गया है। तो मनुष्य भी जानवर का ही काम करता है, लेकिन जब भगवान की पूजा करता है तभी मनुष्य मनुष्य बन जाता है तभी, क्यों, क्योंकि हम मनु के अनुयायी जो है वो मनुष्य है। 14 मनु होते हैं ना ब्रह्मा के दिन में, तो वो मनु के अनुयायी जो बनते हैं उनको मनुष्य बताया गया है ऐसे। तो धर्म तो हर एक मनुष्य करता है, इंसान करता है। और प्रभु जी बताते हैं धर्म में अनेक सीढ़ियां होते हैं, जैसे धर्म करने से कोई बनिया होता है, वो मार्केट में धंधा करता है, अगर किसी चीज वो खरीदता है उसको वैदिक संस्कृति के अनुसार मैक्सिमम 25% प्रॉफिट ही कैन कीप, 25% प्रॉफिट रख सकता है वो। लेकिन अगर वो धर्मपरायण नहीं है तो कभी कभी वो 100%, 200%, 500% भी रखकर वो कमाता है। इसलिए धर्म परायण होने से समाज में पहले शांति भी फैल सकता है, लोग सुखी भी रह सकते हैं, ऐसे प्रभु जी बताते हैं। ये सबसे नीचे श्रेणी का धर्म, साधारण बनिया भी धर्म को पालन कर सकते हैं। लेकिन जब धर्म के अलग अलग सीढ़ी में ऊपर उठने के बाद फर्स्ट क्लास धर्म किसको बोला जाता है, जो किसी भी अपेक्षा के बिना भगवान की दिव्य प्रेम सिखाता है, वो धर्म जो है वो उच्च कोटि का धर्म है। तो प्रभुपाद जी अमेरिका जब गए थे तभी बहुत बड़े बड़े चर्चेस थे अमेरिका में, तो उधर पादरी जो थे वो लोगों ने प्रभुपाद जी को बोला कि आजकल लोगों को धर्म में रुचि नहीं है, देखिए कोई नहीं आते हमारे चर्च में, हम तो संडे को ही खोलते हैं चर्च, संडे को भी आते नहीं है लोग, तो ऐसे बता रहे थे। तो कुछ लोगों ने प्रभुपाद जी को चर्च दान में दे दिया, कुछ लोगों ने बेचा, कुछ लोगों ने दान में दे दिया। तो प्रभुपाद जी ने जब स्वीकारा तभी प्रभुपाद ने प्रचार शुरू की थी, तो अनेक विद्यार्थी स्त्री पुरुष आने लगे मंदिर में और प्रवचन सुनने के लिए, इतना भीड़ आ गया, इतने लोगों का भीड़ आ गया उधर। तो कुछ पादरी भी आए थे और प्रभुपाद जी को पूछ रहे थे कि हम जब प्रचार करते थे, हम जब मंदिर हमारे चर्च खोला था कोई आ नहीं रहे थे, इतना था कि रविवार को उनका कन्फेशन होता है, कन्फेशन बूथ बोलते हैं, क्या करते हैं एक बूथ के सामने आकर बैठकर वो लोग क्या करते हैं, अपने पाप कर्मों को बताते हैं एक पादरी को और माफी मांगते हैं। लेकिन आजकल उसके लिए भी लोग आते नहीं है, वो टेलीफोनिक कन्फेशन करते हैं, वो फोन कर देते हैं, बोल देते हैं पादरी को आप फोन में ही माफ कर दो बस, मंदिर में आते नहीं ऐसे। तो वो पूछ रहे थे प्रभुपाद जी को, कैसे आप प्रचार करते हैं इतने लोग आते हैं? तो प्रभुपाद ने बोला कि आप लोग चीटिंग करते हो, आप टीचिंग नहीं करते हो। क्या चीटिंग करते हो? तो प्रभुपाद जी ने बताया कि आप अपने ही धर्म ग्रंथों में जो दिया गया है उसको पालन नहीं करते हो। भगवान बोलते हैं आपके ग्रंथों में ये जानवरों को मारो मत, लेकिन आप मारते हो, खाते हो उनको। और लोगों को आप ये सिखाते नहीं, परो धर्म को आपने सिखाया नहीं है लोगों को। ऐसे प्रभु ने बताया परो धर्म क्या है। पर का मतलब है दिव्य, पर धर्म का मतलब है जो शारीरिक चेतना से ऊपर जो धर्म होता है आध्यात्मिक स्तर पर, वो धर्म परो धर्म है। तो प्रभु जी अक्सर ये श्लोक कोट करते थे, यथो भक्ति अधोक्ष जय अहेतु की अप्रतिगता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। तो उन्होंने बताया कि अधोक्षज का मतलब क्या है, अध अक्षज, अध का मतलब है हमारे इंद्रियों से परे परम भगवान। अगर हमारे इंद्रियों से परे है कैसा है वो, क्या वो हवा है, क्या वो निराकार है? ऐसा नहीं है, क्योंकि निराकार चीज से कोई प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि शास्त्र प्रेम के बारे में बताते हैं। प्रेम का मतलब है दो व्यक्ति होना चाहिए प्रेम के लिए, एक व्यक्ति प्रेम नहीं कर सकता अपने आप को, प्रेम के लिए दो लोगों की जरूरत है, एक प्रेमिका और प्रेयसी, दो लोगों की जरूरत है। इस तरह अगर जीवों को परम सत्य को प्रेम करना है तो भगवान और भक्ता और भक्ति, ये तीनों तीनों चीज शाश्वत होना चाहिए। और भगवान भी एक व्यक्ति होना चाहिए, नहीं तो प्रेम कैसे किया जा सकता है निराकार चीज को। और एक ओर से हम उनको आंखों से देख भी नहीं सकते हैं, हमारे भौतिक आंखों से, और उसके साथ साथ हमें उनको प्रेम भी करना है। कैसे किया जा सकता है? यथो भक्तिर अधोक्ष जे, तो ये परो धर्म बताया गया है। इसके बारे में सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु समझाते हैं बहुत सुंदर तरीके से। तो प्रभा जी उनको बोला, देखो आप लोग चर्च खोला है, लेकिन आपका चर्च खोलने का मतलब क्या है, आप लोगों को भौतिक प्रलोभन दिखा रहे हो, भौतिक प्रलोभन। वैसे आपको मालूम है अनेक क्रिश्चियन लोग भारत में भी आकर कन्वर्शन करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, है ना, आपको मालूम है ना। तो कन्वर्ट कैसे करते हैं, वो बोलते हैं तुमको क्या चाहिए, वॉच चाहिए, ठीक है हम आपको एक वॉच दे देंगे, और उसके बदले में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक क्रिश्चियन बनना पड़ेगा बस। और तुमको क्या घर चाहिए, हम घर दे देंगे, तुम भी क्रिश्चियन बन जाओ। और आपको ये चाहिए, कपड़े चाहिए, हम कपड़े देंगे, खाने के लिए चाहिए, हम खाने के लिए देंगे। तो इस तरह लोगों को बाहरी दृष्टि से कन्वर्ट करने से, भौतिक प्रलोभन दिखाकर, तो उनके अंदर कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है, अंदर ऐसे ही हैं वो लोग। तो वो लोग क्यों क्रिश्चियन बनते हैं, क्योंकि उनको कुछ भौतिक चीज प्राप्त होता है इसलिए। तो प्रभु जी बता रहे थे ये मतलब, ये कारण है, क्योंकि आजकल लोग क्यों भगवान के ऊपर इच्छा नहीं दिखा रहे हैं, श्रद्धा नहीं दिखा रहे हैं, कारण क्या है? पहले लोग मंदिर में जाते थे, धर्म किस लिए धर्म करते थे, अर्थ प्राप्त करने के लिए। अर्थ क्यों चाहिए, काम उपभोग करने के लिए, है ना, धर्म अर्थ काम, इसके लिए लोग जाते थे। आधुनिक दुनिया में वैज्ञानिक लोग बोल रहे हैं लोगों को, तुमको धर्म करने की क्या जरूरत है, हमारे पास है वो, हम सब आविष्कार किया हमने, आपको सब देंगे आपको भोग करने के लिए, भगवान को भूल जाओ। इसलिए लोग भगवान को छोड़कर किधर जा रहे हैं, वैज्ञानिकों के पास जा रहे हैं, उनके पास जाकर भीख मांग रहे हैं, आप हमको सब सुविधा दो, हम आपसे खुश हैं। तो भगवान को लोगों ने छोड़ दिया। तो प्रभु ने बोला कृष्ण लोगों को, देखो तुम जितना हद तक तुम ये पराधर्म को छोड़कर अपराधर्म को सिखाओगे, उतना लोग तुम्हारे पास आने वाले नहीं है, लोगों को कुछ भलाई नहीं होगा उससे। तो इधर एक महत्वपूर्ण चीज प्रभु बताते हैं, हमारे भौतिक जीवन में हम कितना भी प्रगति करें वो कुछ काम का नहीं है, ऐसे बताते हैं। क्यों? क्योंकि हम भौतिक दुनिया में जो भी हम इकट्ठा करते हैं, कठोर परिश्रम करते हैं, वो सब चीज मृत्यु के समय छीन लिया जाएगा, हम इच्छा करें या ना करें सब छीन लिया जाएगा। इस बौद्ध गया में। और दूसरा चीज शास्त्र बताते हैं, देह योगे न देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दैवात यथा दुखम अयत्नतः। शास्त्र बताते हैं, अरे मूर्ख, तुम यत्न किए बिना तुमको अपने आप जो जीवन में प्रारब्ध में है वो तुमको मिल जाएगा। तुमको भौतिक चीजों के लिए कठोर परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, ऐसे शास्त्र बताते हैं। उदाहरण के लिए, जब जन्म होता है बच्चे का, तुरंत क्या होता है, मां के स्तन में दूध निकलता है, लेकिन कम है। अब सब लोग इधर आ जाइए, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आई थिंक इफ सम डिवोटीज कैन लीव सम प्लेस फॉर दोज आर कमिंग, यू नो, आई कैन कम। देयर आर मेनी मेन ऑल्सो वेटिंग, आप बीच में छोड़ सकते हैं जगह। इधर सामने जो माता जी हैं, थोड़ा जगह छोड़िए गाने के लिए। रहता कि भौतिक प्रगति जो है वो प्रगति नहीं है, प्रभु जी बता रहे थे। कारण क्या है, उदाहरण के लिए अगर आपके पास एक बहुत महंगा एक गाड़ी हो,
धर्म का मतलब क्या है, प्रेम करना और सेवा करना, ये स्वाभाविक है। जैसे आप सब लोग एक क्षण के लिए सोचो, हम अपने परिवार को बहुत पसंद करते हैं, अपने परिवार वालों को, और पड़ोस के बारे में ज्यादा हम सोचते नहीं हैं। कभी कभी हम रिश्तेदारों के बारे में चिंता करते हैं। तो कुछ लोग हैं सामाजिक सेवा करते हैं, तो अलग अलग स्तर पर लोग सेवा करते हैं। तो प्रभु तुलना करते हैं, एक पेड़ में एक डाली है, पत्ता है, फूल है, फल है, इनको अलग अलग पानी देने के बदले अब मूल में पानी डालो तो पूरा पेड़ बहुत हरा भरा हो जाएगा वो। इस तरह भगवान कौन है, ये सारे दुनिया का जड़ है भगवान, मूल है, क्योंकि भगवान ही सबके उद्गम स्थान है, भगवान से ही सब कुछ आए हैं, ये सब भौतिक दुनिया और सब पदार्थ सामग्री सब आए हैं। इसलिए अगर हम अपने प्रेम, जो प्रेम हमारे हृदय में, उस प्रेम की प्रेम में पूर्णता प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें ऐसे व्यक्ति को प्रेम करना पड़ेगा जिसको प्रेम करने से हमारे प्रेम का संतुष्टि होगा। इस दुनिया में देखिए, आप दूसरे लोगों को जितना भी प्रेम दो, वो लोग संतुष्ट नहीं होते हैं। ये दुनिया में आप देख सकते हैं, किसी भी पत्नी को पूछो, पति को पूछो, बच्चों को पूछो, माँ बाप को पूछो, कोई भी इस दुनिया में संतुष्ट नहीं है, सब लोग बहुत हताश हुए हैं। कारण क्या है, हर एक के हृदय में बहुत अपेक्षा है दूसरे लोगों से, और हम प्रेम देने के बाद भी, जैसे उदाहरण के लिए बच्चे होते हैं, माँ बाप की बहुत अपेक्षा होता है कि बच्चा जो है अच्छी तरह पढ़ना चाहिए, तो बच्चा अच्छी तरह पढ़ता है, माँ बाप बोलते हैं तुमको फर्स्ट रैंक चाहिए क्लास में, ठीक है, वो फर्स्ट रैंक प्राप्त करता है, तो माँ बाप बोलते हैं तुमको फॉरेन जाना चाहिए, ठीक है, फॉरेन भी गया, तुमको और भी कमाना चाहिए, तुमको खुद का मकान चाहिए। तो इस दुनिया में हमारी जरूरतों का अंत ही नहीं है, माँ बाप को संतुष्ट करना बहुत कठिन है। इसी तरह पत्नियों को पूछिए, वो बोलेंगे कि पति क्या पति से संतुष्ट है, बोलेंगे नहीं, ये इनके पास ये नहीं है, वो नहीं है, पैसा नहीं है, ये नहीं करते, वो नहीं करते, वो 24 घंटा चिल्लाएंगे वो। और आप पतियों को पूछिए, क्या वो अपने पत्नी से संतुष्ट है, वो बोलेंगे मेरे पत्नी को ऐसे ऐसे होना चाहिए, उसके अंदर ये गुण नहीं है, वो गुण नहीं। तो इस दुनिया के लोगों को हम कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज बताते हैं कि आप भगवान को बहुत आसानी से संतुष्ट कर सकते हो। इस दुनिया के लोगों को जान भी दे दो, वो संतुष्ट नहीं हो जाएंगे आपसे, लेकिन भगवान को थोड़ा पत्र, कुछ फल फूल पानी दे दो, भगवान संतुष्ट हो जाते हैं, ऐसे बताते हैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु सिखाते हैं कि वो परम पुरुष जो है भगवान कृष्ण, उसको कैसे संतुष्ट करना, उसके प्रेम को कैसे प्राप्त करना, अगर ये जान लिया हमने, तो हम भी संतुष्ट हो जाएंगे और बाकी लोग भी संतुष्ट हो जाएंगे, ऐसे बताते हैं। तो इसको परो धर्म बताया गया है, और ये परो धर्म भी जो है उसके लक्षण होते हैं। लक्षण क्या है ये बताते हैं कि ये अहेतुकी होना चाहिए, अहेतु अहेतुकी। तो हर एक व्यक्ति किसी हेतु के साथ ही मंदिर में आता है ना, भगवान के पास आते हैं लोग, अपेक्षा करते हैं, अभी परीक्षा होने वाला है, अभी गणेश जी को नारियल तोड़ना चाहिए, ऐसे लोग जाते हैं परीक्षा के पहले जाते हैं, नहीं तो कुछ कुछ भगवान से अपेक्षा होता है तभी तो लोग मंदिर में आते हैं। मैंने एक व्यक्ति को पूछा, आप आजकल आप आते नहीं मंदिर में, तो बोला कि हमारा जीवन ठीक ठाक चल रहा है, नो प्रॉब्लम, बोला उसने, तो तभी प्रॉब्लम होता तभी आना चाहिए, ऐसे लोग सोचते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु सिखाते हैं कैसे भगवान को, भगवान को पेश आना चाहिए, वो समझाते हैं। आपने सुना होगा बहुत महत्वपूर्ण श्लोक शिक्षाष्टकम में, अश्लिष्य वापादरताम पिनष्टुमाम अदर्शनान मर्महताम करोतुवा यता तता वा विददा तुलं पटो मत प्राणनातस्तु सये वनापरः। तो ये श्लोक में बताते हैं कि भगवान को कैसे पूजा करना चाहिए। हे भगवान, मैं आपकी प्रार्थना करूंगा करूंगी, आपकी सेवा करूंगा, लेकिन किसी भी अपेक्षा के बिना, सिर्फ आपकी संतुष्टि के लिए मैं सेवा करूंगा, मेरे इंद्रियों की दर्पण के लिए नहीं, इसलिए आपकी संतुष्टि के लिए बस, मुझे कुछ भी अपेक्षा नहीं है। अगर आप मुझे आलिंगन देना चाहते हो आलिंगन करो, अगर आप मुझे टुकराना चाहते हो तो टुकराओ, आप जो भी करना चाहते हो आप करो, लेकिन मैं आपकी दिव्य सेवा करना चाहता हूँ, ये सेवा है। इस तरह की सेवा को अहेतु की सेवा ऐसे बताया गया है। एक चैतन्य महाप्रभु के एक महान भक्त थे, उनका नाम था मुकुंद दत्त, नाम था उनका। तो मुकुंद दत्त चैत महाप्रभु के सम वयस के भी थे। तो एक दिन जब चैत महाप्रभु सब भक्तों के साथ, सब भक्तों के संग में थे, भक्तों को अपने कृपा बरसा रहे थे, लेकिन मुकुंद दत्त नाम के एक भक्त थे। तो एक दिन जब चैतन्य महाप्रभु अपने सब भक्तों को कृपा बरसा रहे थे, तो मुकुंद दत्त बाहर खड़े थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको नकार दिया था उनको। तो कारण क्या था, मुकुंद दत्त वैष्णव के संग में आते थे, और कुछ समय के बाद वो दूसरे मायावादियों के संग में भी हो जाते थे, कभी कभी भक्तों के साथ, कभी कभी मायावादियों के साथ, ऐसे। तो महाप्रभु बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने बोला भक्तों को, देखो वो मुकुंद, देखो उसकी भावना कैसा है, वो आकर मेरा नमस्कार करता है एक समय, और दूसरे समय एक लाठी लेकर मेरे सर के ऊपर मारता है इस तरह। तो इसके स्वभाव के कारण मैं इसके साथ संग नहीं करना चाहता हूँ, ऐसे बोला उन्होंने। इसका मतलब क्या है, मुकुंद तो चैतन्य महाप्रभु से बहुत प्रेम करते थे, फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने उनको नकार दिया, क्योंकि वो कभी कभी भक्तों के साथ थे, कभी कभी मायावादियों के साथ थे। भगवान को जो मायावादी प्रचार करते हैं कि भगवान निराकार है, निर्विशेष है, ऐसे उनके साथ संग करते थे वो। तो महाप्रभु ने भक्तों को बोल दिया कि मुकुंद को बोलो कि मैं कभी भी उसका दर्शन भी नहीं दूंगा उसको, ऐसे उन्होंने बोल दिया। तो एक बार कुछ भक्तों लोग आकर महाप्रभु को बोला कि मुकुंद बाहर खड़े हैं और आपकी दर्शना दर्शन के अभिलाषी हैं बहुत, और आप इतने सब वैष्णवों को आप अपनी कृपा देते हैं, तो मुकुंद को भी आप स्वीकारिए। तो महाप्रभु ने बोला कि मैं 1 करोड़ जन्म तक मैं मुकुंद को देखूंगा भी नहीं, ऐसे बोला उन्होंने। तो जब भक्त लोग जाकर मुकुंद को बोला कि चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे ऐसे बोला है आपके बारे में, 1 करोड़ जन्म तक आपके चेहरे भी देखना नहीं चाहते, ऐसे। तो मुकुंद तुरंत अपने दोनों हाथ ऊपर करके नाचने लगे बहुत खुशी से, वो बोले लगे कि मैं चैतन्य महाप्रभु को देखूंगा 1 करोड़ जन्म के बाद, अभी मुझे किसी भी तरह की चिंता नहीं है, मुझे मैं आनंद के साथ में सेवा करते रहूंगा, ऐसे बोला उन्होंने। तो भक्तों को बहुत आश्चर्य हुआ कैसे मुकुंद इतने आनंद में, तो 1 करोड़ जन्म कितना दूर है, दूर की बात है, फिर भी वो बहुत खुश था, सेवा के लिए तैयार था। जब भक्त लोग जाकर चैतन्य महाप्रभु को बोला कि ऐसे ऐसे मुकुंद नाच रहा है, बहुत खुशी में है, वो आनंद में है कि आपके कृपा बरसाने वाले हैं उसके ऊपर 1 करोड़ जन्म के बाद, तो महाप्रभु इतने खुश हो गए। उन्होंने बोला कि तुरंत बुलाओ मुकुंद को मेरे सामने, ऐसे बोल दिया, मुकुंद को लेकर आया। इस तरह के किसी हेतु के बिना भक्ति जो है इसको अहेतु की भक्ति बोलते हैं। इसे ये कृष्ण ये चैतन्य महाप्रभु का शिक्षण है, भगवान अपने दर्शन दे या भगवान अपने दर्शन ना दे, फिर भी मैं भगवान को प्रेम करूंगा, भगवान की सेवा करूंगा। ये एक बार भक्तिदान सरस्वती एक मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए गए थे, लेकिन भगवान के विग्रह बहुत दूर में था और ठीक तरह से देख नहीं पाए, तो उनके एक शिष्य ने बोला कि महाराज आप आगे आइए, हम अंदर जाकर दर्शन ले सकते हैं। तो उन्होंने बोला मुझे अंदर जाने की जरूरत नहीं है, भगवान ने मुझे देख लिया, बस हो गया। अगर मुझे भगवान को देखने मिले या ना मिले, लेकिन भगवान ने अपने आंखों से अपने कारुण्य कटाक्ष मेरे ऊपर डाल दिया, बस ऐसे बोला। इसलिए बक्सा सरस्वती बताते थे कि तुम भगवान को देखने के लिए प्रयत्न मत करो, लेकिन तुम ऐसे सेवा करो कि भगवान तुमको देखने के लिए आएंगे, ऐसे तुम सेवा करो, ऐसे बताते थे। तो ये चैतन्य महाप्रभु का शिक्षण ऐसा है कि भगवान को हमें ऐसे प्रेम करना चाहिए किसी भी अपेक्षा के बिना, हेतु के बिना, साथ साथ अप्रतिहता का मतलब है किसी भी तरह का बाधा उस भक्ति में नहीं आना चाहिए। तो आपको मालूम है हरिदास ठाकुर जो चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त थे, और एक दिन में वो 3 लाख नाम जपते थे भगवान के, इसका मतलब है लगभग 18 घंटा नाम जप करते थे वो दिन में। उनको नामाचार्य बोलते हैं, हरिदास ठाकुर, नामाचार्य हरिदास ठाकुर। तो नामाचार्य हरिदास ठाकुर के अंतिम काल आ गया था, तो बिस्तर पर लेटे थे और वो हरिनाम जप कर रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु उनको मिलने के लिए आए। तो उन्होंने पूछा हरिदास ठाकुर को, हरिदास कैसा है तुम्हारा तबीयत? तो उन्होंने बोला कि महाप्रभु मेरे शरीर तो बहुत तंदुरुस्त है, लेकिन मेरा आत्मा जो है वो बहुत कमजोर है, ऐसे बोला उन्होंने। क्यों? क्योंकि मैं इतने नाम ले नहीं पाता हूँ, 3 लाख नाम मैं रोज लेता था, लेकिन आजकल मैं नहीं ले पा रहा हूँ। क्यों? मेरे आत्मा में शक्ति नहीं है। तो महाप्रभु जान गए कि इनके आत्मा ठाकुर क्यों ऐसे बता रहे थे, हरिदास ठाकुर के शरीर बहुत कमजोर था, लेकिन उनके आत्मा में इतना रुचि था भगवान के नाम जप करने के लिए, फिर भी ऐसे उन्होंने बोला नम्रता के कारण। तो चैतन्य महाप्रभु उनको बोला हरिदास ठाकुर को कि हरिदास ठाकुर तुम तो नामाचार्य हो, तुमने आजीवन इतना नाम ले लिया भगवान का, अभी थोड़ा कम कर लो, तुम्हारा तुम बहुत बूढ़े हो गए हो, नाम कम करो। लेकिन वो कम करने के लिए तैयार नहीं थे वो। और हरिदास ठाकुर ने बोला चैतन्य महाप्रभु को, भगवान मुझे मालूम है कि आप जल्दी ही जल्द अपने लीलाओं को समाप्त करके अपने धाम आप लौटने वाले हो, इसलिए मैं इच्छा नहीं करता कि मैं जीवित रहूं ये देखने के लिए, आप जाने के पहले मैं चले जाने के लिए इच्छा करता हूं, इसलिए आप ये वरदान दीजिए कि मैं आपके पहले में मेरा मृत्यु हो जाए पहले। इस तरह उन्होंने विनती की चैतन्य महाप्रभु से। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला हरिदास ठाकुर को, हे हरिदास, तुम्हारे संग के बिना मैं कैसे जी सकता? अगर तुम नहीं रहोगे तो मेरे जीवन में किसी भी तरह का आनंद नहीं है, ऐसे बोला चैतन्य महाप्रभु। तो हरिदास ठाकुर ने बोला, महाप्रभु मैं तो एक छोटे चींटी के समान हूं, अगर इस दुनिया में अगर एक छोटा चींटी मर जाता है तो क्या फर्क पड़ने वाला है दुनिया को? इस तरह उन्होंने पूछा अपने नम्रता से। महाप्रभु बोला, ऐसा नहीं, तुम्हारे संग से मैं और हम सब वैष्णव, हमारा आनंद तुम्हारे संग से आता है, हमें ये सब बता रहे थे। तो हम इसे हम क्या समझ सकते हैं, महान वैष्णवों के भक्ति में कभी भी बाधा नहीं आता है, ये बात हम समझ सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं प्रभु जी हम बहुत गरीब हैं, इसलिए भगवान के नाम जपने के लिए हमारे पास समय नहीं है, तो हरि नाम को छोड़ देते हैं कुछ लोग। कुछ लोग बोलते हैं हम इतने अमीर हैं और हमें जीवन में करने के लिए इतने चीजें हैं, तो हमारे पास भी समय नहीं है भक्ति करने के लिए। तो अगर अमीर लोग भी भक्ति नहीं करेंगे, गरीब लोग भी नहीं करेंगे, तो कौन करेगा भक्ति? हनुमान जैसे बंदर भी, जटायु जैसे चील भी भक्ति किया है। भक्ति करने के लिए किसी भी तरह का योग्यता की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें लगन चाहिए, बस रुचि चाहिए, दूसरा कुछ जरूरत नहीं है। इसलिए अप्रतिघता समझा गया। तो सनातन गोस्वामी आपको मालूम है, वो जब वृंदावन में रहते थे सनातन गोस्वामी, ऐसे बताया जाता है कि उन्होंने एक व्रत ली थी कि मैं गोवर्धन की परिक्रमा में रोज करूंगा। ऐसे रोज परिक्रमा करते थे इतने मील। तो जब वो बूढ़े हो गए तो उनको चलना थोड़ा मुश्किल था, फिर भी वो धीरे धीरे चलते थे, कभी कभी वो बेहोश भी हो जाते थे ऐसे। तो एक दिन ऐसे चलते समय एक बाल बालक आया। बाल बालक आकर सनातन गोस्वामी बोला कि आप इस तरह क्यों कठिन परिश्रम करते हो, इसकी क्या जरूरत है, आप तो बूढ़े हो चुके हो। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, मैंने व्रत लिया है, कृष्ण को मैंने वचन दिया है कि मैं हर दिन में इस तरह का परिक्रमा करूंगा। तो लड़के ने बोला कि नहीं नहीं, इसको छोड़ दो। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, जब तक कृष्ण नहीं बोलेंगे मुझे तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं इसको, क्योंकि मैंने उनको वचन दिया है। तो ये छोटा लड़का ने क्या किया, वो गोवर्धन पर्वत के ऊपर चढ़कर एक पहाड़ के ऊपर खड़ा रहा वो। तभी उसके पांव के नीचे जो पत्थर था वो पिघलने लगा, वो पिघल कर उसमें उसके पदकमलों का चिन्ह आ गया उसमें। तो वो बड़े पत्थर को निकाल कर नीचे उतरा वो लड़का, आकर सनातन गोस्वामी के पास आकर दिखाया, देखिए ये जो पत्थर है इसमें भगवान के पद चिन्ह है, सब तरह के चिन्ह है इसमें, अगर आप इसका परिक्रमा करोगे किसके समान है, गोवर्धन को परिक्रमा करने के समान है, इसलिए आप आज से आप इस तरह करो। और इस तरह बोलकर वो उनके साथ साथ चला। और वो रहते थे उस समय चकलेश्वर महादेव मंदिर के पास, तो उधर तक आकर वो पत्थर को दे दिया और गोवर्धन के पत्थर को। आजकल भी आप जाएंगे वृंदावन में, आप राधा दामोदर मंदिर में आप देखेंगे वो शिला, गोवर्धन शिला जो सनातन गोस्वामी को कृष्ण ने खुद अपने हाथ से दी थी। इस तरह भक्ति भावना हृदय में जो उमड़ पड़ता है वो ऐसे एक झरना के समान है, कभी उसमें बाधा नहीं आता है किसी भी समय में। तो इसको बोलते हैं अप्रतिघता। तो सनातन गोस्वामी को जो सिखाते हैं चैतन्य महाप्रभु इन श्लोकों में, पहला पहला उन्होंने बताया उनको, जीवर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्थ भेदा भेद प्रकाश। ये जीवात्मा का स्वाभाविक स्थिति है कृष्ण के दास के रूप में रहना। देखिए बाबा जी एक उदाहरण देते हैं, जो सोने का एक अंगूठी, क्या बोलते हैं, सोने का अंगूठी होता है ना, उसमें कभी कभी एक डायमंड, डायमंड को ऊपर रखते हैं, एक डायमंड को उसमें, तो डायमंड को जब रखते हैं डायमंड चमकता है बहुत सुंदर तरीके से। इस तरह सोने का अंगूठी क्या है, जीवात्मा के समान है, और भगवान जो है वो डायमंड के समान है। जब जीवात्मा भगवान को धारण करता है अपने हृदय में तभी बहुत सुंदर दिखता है वो, लेकिन अगर वो डायमंड को आप निकाल दो तो क्या दिखाई देता है सोने में, सिर्फ एक डिप्रेशन दिखाई देता है। तो भगवान को अपने हृदय से निकालो, सिर्फ डिप्रेशन है, स्ट्रेस सब कुछ होता है ना। तो ये उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी, इस तरह जीवात्मा का स्वाभाविक स्थिति है कि हम दास हैं, हम मालिक नहीं हैं। इस दुनिया में हमें दुख क्यों प्राप्त होता है, क्योंकि हम सब मालिक का स्थान अपनाना चाहते हैं। आजकल भारत में भी स्त्री पुरुषों के बीच में इतना झगड़ा होता है पति पत्नियों में, कारण क्या है इसका है? प्रथम कारण है पति सोचता है कि मैं घर का मालिक हूँ, पत्नी सोचती है मैं घर का मालिक हूँ, मैं रानी। और दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रूव करना चाहते हैं किसका ज्यादा शक्ति है घर में, किसका कमांड है चलता है घर में, मेरा सुने सब लोग सुनेंगे तुम्हारा सुनेंगे, देखा जाएगा इस तरह। तो जब जीव अपने स्वाभाविक स्थिति को भूल जाता है कि मैं दास हूँ कृष्ण का, तो माया का दास बन जाता है। ना तो हम कृष्ण के दास रहते हैं, नहीं तो हम किसका दास बनते हैं? माया के दास बनते हैं। और माया का दास का मतलब क्या है? हमें तरह तरह के भौतिक दुनिया की तकलीफों को झेलना पड़ता है। लोग अपने पत्नी, अपने बच्चे, अपने नौकर देने वाले जो मालिक हैं उसके, और ये कुत्ते के, सबके दास बनते हैं लोग, सिर्फ भगवान को छोड़कर। भगवान का दास नहीं बनेंगे, सब दूसरों का दास बनते हैं अपने जीवन में, आप देख सकते हैं। तो ये विधि है कि भगवान के दासत्व को अपनाएंगे नहीं तो हम माया का दासत्व हमें अपनाना पड़ेगा। जैसे एक देश में हम देश के कानून को पालन नहीं करेंगे तो हमें पुलिस और जेल में जो है लोगों उनके कानून को पालन करना पड़ेगा, है ना? या तो देश के कानून नहीं तो पुलिस स्टेशन के कानून, दोनों में एक को पालन करना पड़ेगा। हम दोनों से बचकर भाग नहीं सकते हम, ऐसे हैं। तो जैसे हम आपने बताया उनको, देखो सनातन, तुम ये भौतिक शरीर नहीं हो, तुम मन बुद्धि अहंकार जो है वो भी नहीं हो, उसके भी अंदर जो जीवात्मा है वो जीवात्मा हो तुम। जीवात्मा के दो आवरण है, ये सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर है, और तुम दोनों से तुम परे हो। और उन्होंने बताया कि तुम भगवत धाम के हो, इस भौतिक दुनिया के नहीं हो, वो भी बताया उन्होंने। आगे सब में बताते हैं, कृष्ण बोली सही जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया दे माया तारे दे संसार दुख। बताते हैं कृष्ण को भूल कर अनादि काल से ये जीवात्मा बहिर्मुख हो चुका है, इसके कारण माया क्या करती है, वो संसार दुख देती है, ऐसे बताते हैं। प्रभुजी बताते हैं, अनफॉर्चुनेटली has forgotten his relationship with Krishna. The living entity is forgetfulness is described here as anadi, which indicates that it has existed since time immemorial. One should understand that due to his desire to enjoy himself in competition with Krishna, the living entity comes into material existence. So Prabhuji batate hain ye Krishna ko bhulna hi jeev ke dukhon ka karan hai, aise batate hain. So Krishna ko jab hum bhul kar कृष्ण के साथ हम स्पर्धा करते हैं भोग करने के लिए, तभी इस भौतिक दुनिया के दुख सब शुरू होते हैं, इस तरह बताते हैं। एक्चुअली ये जो सत्य है, जब मुझे पहली बार मुझे सुनने को मिला, मुझे लगा कि कोई मुझे अमृत पान करा रहे हैं, मुझे ऐसा लगा मुझे पहली बार जब मैंने सुना। क्योंकि मैं इस्कॉन में आने के पहले हम अनेक संस्थाओं में गए हैं और उधर लोगों ने मुझे सिखाया कि तुम ही भगवान हो, सिर्फ तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको मेडिटेशन करना पड़ेगा, मेडिटेशन करके करके तुम क्या बन जाओगे, तुम भगवान बन जाओगे, इस तरह अनेक लोगों ने सिखाया हमको, अनेक संस्थाओं में गए हम, भगवान निराकार है और तुम भी ब्रह्म हो, तुम ब्रह्म में लीन हो जाओगे और तुम भगवान बन जाओगे, इस तरह अनेक लोगों ने सिखाया हम। तो हमको हमेशा आश्चर्य होती थी कि हम अगर भगवान हैं तो हम माया के चंगुल में क्यों आए हैं, ऐसे माया हमें को फंसा दिया है, क्या माया भगवान से भी शक्तिशाली है, इस तरह का प्रश्न हमें हमेशा उठता था। तो वो लोग बोलते थे नहीं नहीं, तुम माया के भी आदि नहीं हो, तुम्हारा शरीर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, भौतिक चीज सिर्फ ब्रह्म है, ये सब ब्रह्म है, ऐसे बोला उन्होंने, ब्रह्म सत्यम जगत नित्य। तो हमें आश्चर्य होती थी कि माइक अभी है ना इस जगह में, माइक भी है, शरीर भी है, लाइट भी है, तो वो लोग बोलते हैं कि ये सब मिथ्या है, वो नहीं है। तो बाद में जब अपने वैष्णव सिद्धांत सुना हमने, तभी पहली बार हमें समझ में आया कि हम परम भगवान नहीं है, हम कौन है, हम दास हैं, भगवान के दास हैं, हम कृष्ण के दास हैं, कृष्ण के दास बनो और दास बनकर सेवा करो, तब माया क्या करेगी, तुरंत सब तकलीफों को तकलीफों से तुमको छुटकारा दे देगी। कैसे, जैसे अगर कोई जेल खाने में किसी चोर को लेके जाते हैं तो पुलिस क्या करते हैं, उसको बेल्ट निकाल कर मारते हैं, पाट 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 मारते हैं दोनों साइड में, है ना, तो दर्द होता है उसको। लेकिन जब वो व्यक्ति सज्जन बन जाता है तो क्या करता है पुलिस स्टेशन, दरवाजा खोल कर उसको छोड़ देते हैं, चले जाओ अभी तुम नेक बन गए हो, है ना। इस तरह माया देवी वही करती है,
जो लोग भगवान से स्पर्धा करना चाहते हैं और इंद्रिय भोग करना चाहते हैं, बहिर्मुख हो गए हैं, भगवान की सब सामग्रियों को लेकर अपने खुद की उपभोग में लगाना चाहते हैं, उनको क्या करते हैं, माया सताती है बहुत त्रिविध तापों से। जब कोई अपने दासत्व को स्वीकारते हैं, तुरंत माया देवी उनको क्या करते हैं, छोड़ देती है। ये बहुत बड़े फार्मूला चैत्र महाप्रभु ने बता दिया इनको, सनातन गोस्वामी को। कब स्वर्गे उठाया कब नरके डुबाया, दंड्य जने राजा ये नदी ते चुबाया। तो उन्होंने बोला ये जीव जो है दुख भोगने वाला जीव इस दुनिया में कब स्वर्ग उठाया, कभी उसको स्वर्ग में लेके जाता है, जाए लेके जाते हैं उसको, कभी है? शरीर प्राप्त होता है स्वर्ग में है? कभी उसको कबू नरक डुबाया, कभी नरक में उसको डुबाया जाता है उसको तकलीफ में। जैसे आपका अनुभव होगा ये बहुत बड़ा जेंट व्हील होता है ना, कितने लोगों ने जेंट व्हील में सवारी किया है आपने, बहुत लोगों का अनुभव है, ठीक है हा? तो आपका अनुभव होगा ऊपर जाते समय अच्छा लगता है ना आपको, ऊपर जाता बहुत अच्छा लगता है ना, तभी ऊंचे ऊपर से जब नीचे आता है तभी बहुत डर होता है कि आप गिर जाने वाले हैं बाहर, है ना, ऐसे डर होता है, लेकिन वापस ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं ऐसे है। इस तरह जीवात्मा को भी जब स्वर्ग में उसको स्थान दिया जाता है, इंद्रलोक में ऐसे अलग अलग लोकों में तो वो बहुत आनंद लूटता है। उधर अप्सराएं हैं, उधर नंदनंदन बगीचे हैं, उधर सुरापान है, तो सोचता है कि बहुत भोग है इधर हम, लेकिन उस समय के बाद उसके पुण्य खत्म हो जाते हैं, क्या होता है उसको नरक में डुबाया जाता है, उसके बाद मृत्युलोक में आता है, पाप करता है नरक में जाता है, नरक में बहुत तकलीफ भोगना होता है उसको, 28 तरह के नरक हैं जिसमें उसको तरह तरह के तकलीफों में डुबाया जाता है। तो इस तरह जीवात्मा इस तरह ऊपर नीचे जाने का एक तुलना किया गया है। उन दिनों में राजा लोग क्या करते थे, एक कैदी को उल्टा करते थे ऐसे, एक लाठी में उल्टा करके ऐसे उसको बांधते थे एक रस्सी से, तो उसको पानी में डुबाते थे, उसके सर नीचे है और पानी में डुबाते थे ऐसे हा? तो जब डुबाते थे उसको श्वास लेने के लिए हवा नहीं मिलता था, ऐसे उसको बहुत तकलीफ होता था पानी के अंदर हा? तो तुरंत बाहर निकाल देते, तो उसको अच्छा लगता, तो बोलते थे अभी सत्य को बोलो, अभी सत्य को निकालते थे, अगर वो बोलता नहीं था तो वापस ऐसे पानी के अंदर हा? तो नरक में जाना वो पानी के अंदर में रहने के समान है, और स्वर्ग में जाना का इसके समान है, पानी से ऊपर उठाओ, क्या वो आनंद है, वो आनंद नहीं है, वो दुख से निवारण है, बस आनंद नहीं है। इस दुनिया में कैसा है, बड़ा दुख है थोड़ा निवारण, और बड़ा दुख और थोड़ा निवारण ऐसे, और निवारण के समय को हम क्या बोलते हैं, उसका कैसे संबोधित करके बोलते हैं, हम सुख बोलते हैं। ये दुनिया में दुख कैसे आता है, जैसे आपने बैडमिंटन खेला होगा, बैडमिंटन देखा है ना, बैडमिंटन लोग खेलते हैं ना, बॉल इधर से आता है ऐसे मारा, इधर से आता ऐसे, सब शरीर में मारते रहो, इस तरह दुख किधर से आएगा पता नहीं हमें है? हम ये के बाद दुख को हम क्या करते हैं, संभालते रहते हैं। परिवार में आप देख सकते हैं, अगर एक छोटा बच्चा है, अगर अचानक छोटे बच्चे को कभी कभी ज़्यादा मोशन हो जाता है, क्या बोलते हैं, डायरिया जैसे है, माँ बाप बहुत डरते हैं, डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, ठीक हो गया वो, और बच्चे को हमेशा देखते रहना होता है, कभी वो आग को छू लेता है, कभी कभी वो चाकू ले लेता है हाथ में, तो माँ बाप हमेशा डरते रहते हैं ना। लेकिन बड़ा होने के बाद भी ऐसा नहीं कि उनका चिंता चला गया, बड़े होने के बाद दूसरी तरह की तकलीफों में फंस जाता है बच्चा, है ना। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि इस दुनिया में अभी बड़े होने के बाद सोचते हैं हमारे बेटे को कैसे इंजीनियरिंग मिलेगा, हमारी बेटी को कैसे शादी होगा, और हमको खुद का घर मकान हम बनाएंगे, ये लोन कैसे मिलेगा, लोन मिलने के लिए क्या क्या करना चाहिए, इनकम टैक्स से कैसे हम बचेंगे, इस तरह लोग सोचते हैं, कैसे हम ज़्यादा पैसे बचा सकते हैं, इस तरह लोग सोचते रहते हैं। तो इस दुनिया में क्या है, चिंता एक के बाद चिंता एक आता है ना, हम क्या करते हैं, चिंता को नकारते जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति सब चिंताओं को बहुत अच्छी तरह नकार सकता है तो उसको बहुत परम विजय माना जाता है, वो है ना, विजय प्राप्त किया उसने ऐसे। तो इसलिए वो बोलते हैं कि दुनिया में सुख ही नहीं है। क्या है सुख, सुख मतलब दुखों से निवारण, उसको सुख बोला गया है, क्योंकि जब तक ये शरीर है तब तक दुखी है, क्योंकि शरीर में इतने ये व्याधि मंदिर हम कहा गया है, शरीर को व्याधि का मंदिर है ये शरीर, ये सब तरह के व्याधियां आते हैं इस शरीर में। तो ये जीवात्मा जो है जब तक ये शरीर के पिंजड़े में फंसा हुआ है तब तक जीवात्मा को सुख नहीं है। इसलिए बताते हैं सनातन गोस्वामी का ऐसे, एक ओर से हम सब लोग शरीर में फंसे हैं और दूसरी ओर से जितना हद तक हम कृष्ण से बहिर्मुख होते हैं उतना ज्यादा तकलीफ भी होता है त्रिविध तापों से। आगे बोलते हैं, साधु शास्त्र कृपाया यदि कृष्णोन्मुख से ये जीव निस्तारे माया ताहरे चढ़ाया। बताते हैं किसी न किसी तरीके से अगर साधुओं के संग से जब एक जीवात्मा शास्त्रों के विधि विधान को सुनता है और कृष्ण भावना भावित हो जाता है तब जीवात्मा ये भौतिक चंगुल से मुक्त हो जाता है, ऐसे बताते हैं। और प्रभुपाद जी द डेफिनेशन देते हैं, हु इज अ कंडीशन सोल, प्रभुपाद गिव्स द डेफिनेशन, डू यू नो व्हाट इज अ कंडीशन सोल? अ कंडीशन सोल इज वन हु हैज फॉरगॉटन कृष्ण एज हिज एटर्नल मास्टर, थिंकिंग दैट ही इज एंजॉयिंग इन द मटेरियल वर्ल्ड। द कंडीशन सोल सफर्स द थ्री फोल्ड मिजरीज ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस। जीवात्मा सोचता है कि मैं भोग कर रहा हूं, इस तरह वो सोचता है। एक्चुअली भोग नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो दुख भोग रहा है। प्रभुपाद उदाहरण देते थे, जो लोग सिगरेट पीते हैं ना वो क्या करते हैं, आग को अंदर पीते हैं, अंदर पीने से उनके लंग्स जो है सब जल जाता है अंदर, और वो लोग सोचते हैं कि हमें बहुत आनंद मिल रहा है। ये किसका आनंद के समान है? ये जो ऊंट के आनंद के समान है। ऊंट जो है जब उसको क्या बोलते हैं, कहता है वो कैक्टस, यू नो कैक्टस, निवड़ंग, निवड़ंग मालूम है, निवड़ंग काटता है, काता है जब ऊंट वो चबाता है वो उसके अंदर को काटता है और उससे खून निकलता है और खून को चूसता है और अपने मित्रों को जाकर बोलता है कि देखो ये निगुड़ंग का जो रस कितना स्वादिष्ट है, देखो ऐसे बोलता है वो, कितना बड़ा मूर्ख प्राणी है देखो। हाँ, इस तरह लोग जो सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, अपने ही शरीर को सताते हैं और सोचते हैं कि आनंद में है। हाँ, इस तरह सोचते हैं। इस तरह जीवात्मा भी इस दुनिया में लात खाता है लेकिन सोचता है कि आनंद है, इस तरह सोचता है, बोलते हैं। इसलिए एक बद्ध जीव जो कृष्ण को अपने मालिक रूप के भूल गया है उसको बद्ध जीव बोला गया है। माया मुग्ध जीव रहना ही स्वतः कृष्ण ज्ञान जीवेर कृपा ये कैल कृष्ण वेद पुराण। हे माया मुग्ध जीव जो है वो कृष्ण भावनामृत को अपने आप जागृत नहीं कर सकता है, इसलिए कृष्ण ने क्या किया है, जीवेर कृपाय कैल, जीव के ऊपर कृपा करने के लिए कृष्ण ने वेद पुराण सब रचाया है, ऐसे बताते हैं। तो भगवान खुद आते हैं कैसे, वेद व्यास के रूप में आकर सब शास्त्रों को उन्होंने लिखा है ताकि जीवात्मा ये बद्धावस्था से उसको ऊपर उठाया जाए, ऊपर उठ सकता है वो। शास्त्र गुरु आत्मरूपे अपनार जनान कृष्ण मोर प्रभु त्राता जीवे रह ये ज्ञान। हमारे तीन मित्र हैं इस दुनिया में, कौन है, एक है शास्त्र, एक है परमात्मा अंतर्यामी और तीसरा है गुरु, गुरु जो हमें सिखाते हैं कृष्ण भावनामृत के संबंध में। ये हमारे तीन बड़े मित्र हैं और ये हमें दिव्य ज्ञान देते हैं। और क्या ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है, कृष्ण मोर प्रभु, कृष्ण मेरे मालिक हैं और वो त्राता हैं, मेरे रक्षक हैं, इस तरह वो जान जाता है, इस तरह बताते हैं। अविधेय नाम भक्ति प्रेम प्रयोजन पुरुषार्थ शिरोमणि प्रेम महाधन। वो बताते हैं इधर इन लास्ट दो श्लोकों में, कृष्ण माधुर्य सेवानंद प्राप्ति र कारण कृष्ण सेवा करे आर कृष्ण रस आस्वादन। हाँ, वो बताते हैं इधर कि असली धन क्या है। सब लोग इस दुनिया में धन के पीछे पड़े हैं, तो असली धन क्या है वो बताते हैं। जब जीवात्मा अपने असली स्थिति में स्थित हो जाता है इस चेतना के साथ, तीन चीज है, संबंध अभिधेय प्रयोजन। संबंध का मतलब मैं कौन हूं, भगवान कृष्ण कौन है, और हमारा नाता क्या है, संबंध क्या है। और दूसरा अभिधेय का मतलब है भक्ति में सेवा, जिसके द्वारा भगवान कृष्ण प्राप्त होते हैं। और प्रयोजन का मतलब है ये प्रेम का, कृष्ण प्रेम का आस्वादन जो है वो ही सबसे महाधन है, ऐसे बताते हैं। When one attains the transcendental bliss of an intimate relationship with Krishna, he renders service to him and tastes the mellows of Krishna consciousness. So, ऐसे अनेक श्लोक हैं आगे भी। तो चैतन्य महाप्रभु के शिक्षा में ये बहुत बेसिक शिक्षा है, आज हम जो चर्चा कर रहे हैं सनातन गोस्वामी को उन्होंने सिखाया, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जितना हम शरीर से पहचानते हैं उतना हम शारीरिक धर्मों को अपनाएंगे, जितना हम आत्मा से पहचानते हैं उतना हम आत्मा के धर्मों को अपनाएंगे। हमेशा भक्त को यह चेतना में रहना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और जितना मैं इंद्रिय तर्पण में लगूंगी उतना मैं कृष्ण से दूर जाऊंगा। अगर कृष्ण के पास आना है तो हमें इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। तो ये जो सत्य जो बता रहे हैं इसमें जीवात्मा के संबंध में और उसके भगवान के साथ जो संबंध के असली संबंध, इसको अगर कोई जान गया हो वो ही परोधर्म को अपना सकते हैं। परोधर्म का मतलब है आत्मा के स्तर पर किया जाता है। हमारे इस्कान मंदिरों में जो आते हैं लोग आते हैं, जो भक्त बनते हैं, इधर माला करते हैं, सोलह माला करते हैं, दीक्षा लेते हैं, आगे चलते हैं, ये ऐसे बढ़ेंगे भक्ति में धीरे 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 ऊपर कि ये समझेंगे कि ये भौतिक दुनिया के किसी भी पदार्थ हमें सुख प्रदान नहीं कर सकता है, ये समझ जाएंगे। हम जितना हम कृष्ण भावना में आगे बढ़ेंगे तो प्रभा जी बोलते हैं ये एक टेस्ट है। टेस्ट क्या है? परीक्षा है। परीक्षा क्या है? क्या हमारी सुख इंद्रिय भोग से आता है, भौतिक पदार्थों से, नहीं तो हमें भक्तिमय सेवा करने से हमें आनंद मिलता है, ये दोनों में से किधर से मेरा आनंद मिलता है? अगर हम भौतिक दुनिया के चमकने वाले दमकने वाले चीजों के पीछे हम भागेंगे इस दुनिया में तो उसका अंत ही नहीं है, उसका अंत ही नहीं है। क्योंकि इस दुनिया में जितना भी आर्थिक विकास करो उसका अंत ही नहीं है। आजकल क्या होता है, आधुनिक दुनिया में लोग दूसरों को देखकर वो भी कठोर परिश्रम करते हैं। लोग सोचते हैं कि जितना हम परिश्रम करके कमाएंगे, जितना हम इकट्ठा करेंगे, जितना हमारे पास भौतिक पदार्थ होंगे हमें उतना ज्यादा सुख प्राप्त होगा, लेकिन सारा जीवन कठोर परिश्रम करने में ही चला जाता है, कृष्ण को जानते नहीं है। लेकिन मनुष्य को ऐसे जीना चाहिए कि जो सर्वत्र लभ्यते दैवात यथा दुःखम आयतनतः, हमारे प्रारब्ध के अनुसार जो भेजा जाता है उसको स्वीकारना चाहिए। और ऐसा नहीं कि हम लापरवाही बने, कुछ धंधा ना करें, ऐसा नहीं है। हमें काम करना चाहिए, नॉट डूइंग एनी वर्क और ओवर वर्किंग, कुछ भी काम धंधा नहीं करना और ज्यादा कठोर परिश्रम करना, दोनों को खंडन किया गया शास्त्र में, दोनों को। जैसे अगर आपके पास एक मारुति गाड़ी है उसको आप 30 किलोमीटर में चलाएंगे वो उसका यूज नहीं है, अगर आप उसको 200 किलोमीटर में चलाएंगे वो भी तभी भी क्या हो जाता है, वो बर्बाद हो जाता है गाड़ी। इस तरह हमारे जीवन में 8 घंटा 10 घंटा काम किया, जो हमें प्राप्त हुआ है, पैसा प्राप्त होता है प्रारब्ध के अनुसार, उसको अपना कर बाकी समय हमें क्या करना चाहिए, कैसे हम आत्मा की प्रगति हम करें, आत्मा की प्रगति कृष्ण भावना में हम कैसे प्रगति करें, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। ये सिखाते हैं चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को आगे के शिक्षण में भी। तो ये कृष्ण की भक्ति कैसे की जाती है, हमारे साथ इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को कृष्ण की सेवा में लगाने से तो कृष्ण भावनामृत जागृत होता है। और वो बताते हैं कि कृष्ण भावनामृत जागृत जब हो जाता है वो किसके समान है, जब आप भूखे रहते हो तभी आप खाते हैं तो आपको जिह्वा में भी एक स्वादिष्ट स्वाद प्राप्त होता है ना, खाते समय, और खाने के बाद जब पेट में पहुंच जाता है तभी तृप्ति प्राप्त होता है पेट में आपको, उसके बाद आपके शरीर में शक्ति भी प्राप्त होता है, तीन चीज प्राप्त होते हैं। इस तरह जब हम हरिनाम जप करते हैं शुरुआत में हमें बहुत कड़वा लगता है हरिनाम जप करना, उसमें रुचि नहीं है, लेकिन हरिनाम जपते रहो धीरे धीरे सालों के बाद क्या होता है वो बहुत स्वादिष्ट हो जाता है। जैसे रूप गोस्वामी बताते हैं सात कृष्ण नाम चरितादि सिताप्य विद्या, ये कृष्ण नाम जो है उसको हम जब लेते हैं तभी हमें कड़वा लगता है, क्योंकि हमारा पित्त उपतप्ता है, हमारे जिह्वा पित्त से उपतप्ता है। लेकिन उसी रूप गोस्वामी ने बोला, कृष्ण ये दो शब्द को मैं जब बोलता हूँ मुझे करोड़ों जिह्वा करोड़ों कानों की अपेक्षा में करता हूँ, क्योंकि इतना मधुर है वो नाम, ऐसे बताते हैं वही रूप गोस्वामी। तो पहला चीज है हमें स्वाद प्राप्त होगा भगवान के नाम लेते समय, बहुत आनंद प्राप्त होगा। दूसरा है जब नाम को लेते रहते हैं हमें एक तृप्ति प्राप्त होगा। एक तरह का क्या है तृप्ति, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं जो हमारे हृदय में हैंकरिंग होते हैं, क्या बोलते हैं आकांक्षाएं, हैंकरिंग हैंकरिंग तृष्णा, करेक्ट, मृग तृष्णा जो होता है ना, इस दुनिया के जो प्रलोभन है उसकी मृग तृष्णा होता है, वो तृष्णा शांत हो जाएगा हमारे हृदय में, हम बहुत संतुष्टि प्राप्त करेंगे हृदय में। तीसरा बताते हैं कि हमें बल प्राप्त हो, क्या बल प्राप्त होगा, हम जब ये ग्लास के अंदर दूध डालते रहो जब पूरा भर जाता है वो उमड़ पड़ता है ना, इस तरह कृष्ण के नाम लेते 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 जब हम बहुत संतुष्ट हो जाते हैं तभी हम कृष्ण को दूसरों को देंगे, हम दूसरों को हरिनाम प्रदान करेंगे, दूसरों को कृष्ण के बारे में बताएंगे, ऐसे उसके लिए बल प्राप्त होता है, ये तीनों ऐसे। तो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा ऐसा है कि हम कृष्ण की भक्ति को जागृत करना चाहिए और इस तरह की भक्ति करना चाहिए कि हमें सदा जैसे हम गोपियों वृंदावन की गोपियों को देखते हैं कैसे उन्होंने सेवा की भगवान कृष्ण की, 24 घंटे का स्मरण चिंतन के साथ उन्होंने भगवान की सेवा की। ऐसे खास करके चैतन्य महाप्रभु आए विप्रलंब सेवा को सिखाने के लिए। हाँ, विप्रलंब सेवा का मतलब है जब भगवान कृष्ण वृंदावन को छोड़कर जाते हैं अक्रूर के साथ, कृष्ण बलराम दोनों जाते हैं, तभी एक सुंदर श्लोक आता है, एवं ब्रुवाणाम विरहातुरा वृषम व्रजस्त्रिय कृष्ण विषक्त मानसा विसृज्य लज्जाम दुरु दुस्म सुस्वरन गोविंद दामोदर माधवेति। तो ऐसे बताया गया है कि एवं ब्रुवाणाम विरह आतुरा वृषम, ये सब गोपियों के हृदय में कृष्ण के लिए इतना विरह भावना था। तो आप एक सुंदर तस्वीर देखेंगे जिसमें कुछ गोपियां वो घोड़े घोड़ों के सामने लेटी हैं, कुछ गोपियां घोड़ों के लंगड़ों को पकड़ रही हैं, कुछ गोपियां रथ को पकड़ रही हैं, कुछ गोपियां बेहोश हो गई हैं, रो रही हैं ऐसे हैं, इस तरह के विरह भावना के साथ रात भर वो गा रही थी गोविंद दामोदर माधवेती, ऐसे एक मधुर कंठ के साथ रात भर कृष्ण के नाम गा रही थी वो ऐसे। अगले दिन जब कृष्ण बलराम को लेके गए हैं तभी ऐसे गोपियां देख रही थी मानो आप किसी पेंटर ने चित्रों को पेंट किया हो, इस तरह ऐसे खड़े रहे थे। जब तक वो रथ दूर तक चला गया, वो रथ के जो झंडा है ऊपर वो झंडे को देख रही थी, जब तक वो अंतर्धान हो गया वो, तब तक वो देख रही थी ऐसे। ये गोपियों की विरह भावना जो है यही भावना को सिखाने के लिए आए हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु। इसलिए ये विरह भावना से क्या दुख बढ़ता नहीं है, नहीं, क्योंकि उद्धव ने देखा कि जब उद्धव कृष्ण के बारे में बता रहे थे गोपियों को लगा कि कृष्ण इधर ही आ गए हैं, ऐसे गोपियों को इतना अनुभव हुआ कृष्ण की जब कृष्ण के बारे में वो सुन रहे थे। तो ये विरह का महत्व है, कृष्ण के विरह में कृष्ण का स्मरण और कृष्ण का अनुभव ज्यादा होता है, जिससे ज्यादा होता है कृष्ण के साथ रहने से भी ज्यादा होता है ऐसे। तो शिक्षाष्टकम में 8 श्लोकों को सिखाया चैतन्य महाप्रभु ने। ये 8 श्लोकों में आप देखेंगे 2 महत्वपूर्ण चीज देखेंगे आप। एक महत्वपूर्ण चीज है हरिनाम के संबंध में, आप देखेंगे हर श्लोक में हरिनाम हमें किस भावना के साथ हमें हरिनाम लेना चाहिए। हे भगवान कृष्ण, आपके हर एक नाम में आपने अपने शक्ति को डाला है, हे गोविंद, हे दामोदर, हे मधुसूदन, हे गोपाल, इन सब नामों में आपने अपने शक्ति को डाला है। और हम किसी भी नाम से हम जुड़ जाते हैं, नाम लेते हैं, तुरंत हमें आपकी दर्शन और आपकी संग प्राप्त होता है। लेकिन मैं इतना बड़ा मूर्ख हूँ कि मैं आपको आपके नामों को मैं बहुत उत्साहपूर्वक में उच्चारण नहीं करता। हे भगवान, मैं आपका दास हूँ, लेकिन इस भौतिक दुनिया के जन्म और मृत्यु में फंस गया हूँ, कृपया आप मुझे ऊपर उठाइए और आपके पद कमलों के कोटानुकोटि जीवात्माओं में मुझे भी एक बना लीजिए, एक दास बना लीजिए ऐसे। हे भगवान, कब ऐसे समय आएगा जब मैं जब आपका नाम का उच्चारण करूंगा उस समय मेरे कंठ गदगद हो जाएंगे, मेरे आंखों में आंसू निकलेंगे और मेरे शरीर रोमांचित होकर कांप उठेगा ऐसे। कब ऐसे क्षण आएगा मैं सदा आपका स्मरण कर पाऊं 24 घंटा एक क्षण भी कोटानुकोटि युगों के समान मुझे महसूस हो, कब ऐसा समय आएगा। इस तरह वो प्रार्थना में आप देखेंगे, हे भगवान मैं तृण से भी नीच हूँ। वो बताते हैं तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णु। जिस व्यक्ति के अंदर ये भावना आ चुका है कि वो तृण से भी नम्र है और एक पेड़ से भी ज्यादा सहिष्णु है। क्यों पेड़ को बताया गया है? क्योंकि पेड़ से लोग फल फूल सब निकालते हैं। कुछ ऐसा ही ये होता है, एक पक्षी होता है जो पेड़ में जाकर आश्रय लेता है, लेकिन पेड़ को ही वो ये करता है, क्या बोलते हैं मालूम है ना आपको, वुडपेकर, उधर के होल बनाकर अंदर रहता है वो ऐसे। और कुछ लोग पेड़ का आश्रय लेते हैं और उस पेड़ के ही डाली को काटते हैं, लेकिन पेड़ सब कुछ सहन करता है। पेड़ कभी भी मुंह खोल कर पानी भी मांगता नहीं है किसी से, अगर कोई पानी देते तो स्वीकारता है। इस तरह मेरे अंदर सहिष्णुता आए मेरे अंदर और मैं तृण के समान नीच रहूं हूँ और मैं सब वैष्णवों को मैं आदर दूं, सब जीवों को आदर दूं और किसी भी आदर का अपेक्षा ना करूं। इस तरह की भावना के साथ मैं हमेशा आपकी हरिनाम लेते रहूं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये प्रार्थना है चैतन्य महाप्रभु का। चैतन्य महाप्रभु का फिलॉसफी इतना ऊंचा है, वो इच्छा नहीं करते हैं भौतिक पदार्थों की प्राप्ति के लिए, न धनम न जनम न सुंदरीम, ये सब नहीं चाहिए बोलते हैं। और ये मोक्ष का भी इच्छा प्राप्त नहीं करते हैं, वो बोलते हैं कि भगवान मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। लोग सोचते हैं अरे मोक्ष भी नहीं चाहिए, तुम क्या चाहिए तुमको, ये भौतिक दुनिया का भी चीज नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए, क्या चाहिए। वो बताते हैं मम जन्म ने जन्म ने ईश्वरे भवतात् भक्ति रहे तो कितई, हे भगवान मुझे जन्म जन्म के बाद मुझे क्या चाहिए, एक ही चीज चाहिए आपकी दिव्य सेवा, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने एक सुंदर गीत में गाया है, कीट जन्म हो यथा तो वादास बहिर्मुख ब्रह्म जन्म नहीं मोर आश, मानस देहो गेहो यो किचु मोर अर्पिलु तुवा पदे नंद किशोर। हे भगवान नंद किशोर, मेरे पास जो भी है, मेरे मन मेरे देह मेरे परिवार मेरे संपत्ति सब कुछ मैं क्या करता हूँ, मैं आपको दे देता हूँ और आप क्या दो, आप अपने आप को दे दो मुझे, ऐसे बताते हैं, मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए आपको छोड़कर, ऐसे बताते हैं। बताते हैं उसमें कीट जन्म हो यथा तो अदास, मैं ये कीड़ा अभी बनने के लिए तैयार हूँ भगवान अगले जन्म में, अगर एक भक्त के घर में मैं कीड़ा बन जाऊं। क्यों? क्योंकि भक्त के घर में मैं घूमता रहूंगा तो महाप्रसाद इधर उधर बिखरा रहेगा, उसको खाकर मैं भी भक्त रहूंगा, भक्त बनकर तो मैं एक वैष्णव कीड़ा बन जाऊंगा, है ना ऐसे। लेकिन मैं बहिर्मुख ब्रह्म बनूंगा, चतुर्मुख ब्रह्म और ये सृष्टि वगैरह करके मैं गर्वित हो जाऊंगा तो क्या फायदा, तो गर्वित होकर मैं नरक में चला जाऊंगा उसके बाद। इसलिए अच्छा है कि कीड़ा भी बनाओ मुझे, लेकिन मुझे वैष्णव बनाओ, तो मैं बार बार जन्म लेने लिख तैयार हूँ। ऐसे बोलने वाले भक्तों को भगवान क्या करते हैं, तुरंत उसी जन्म में भगवान अपने धाम में ले लेते हैं ऐसे भक्तों को, अपने ऐसे भक्तों को संग प्राप्त करने के लिए भगवान भी इच्छा करते हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा है। आज इतने कम समय में हमने थोड़ा बहुत चर्चा की, लेकिन आप चैतन्य चरितामृत खरीद कर पढ़िए, इसमें आपको हर पृष्ठ में इतना सीखने को मिलेगा, इसमें इतना चैतन्य महाप्रभु की दिव्य उन्माद जो है उसको पढ़ने से उसका एक बूंद मात्र हमारे हृदय में प्रवेश करे, बस हम आजीवन उनके पदकमलों के आश्रय लेकर हम रह सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी की शक्ति इतना है कि इस चैतन्य महाप्रभु के इतने ऊंचे सिद्धांत को वो अमेरिका में जाकर नीचे से नीचे हिप्पियों को सिखाकर उनके हृदय में कृष्ण भावनामृत को जागरण कर दिया है। कितना बड़ा चमत्कार है। श्रील प्रभुपाद की, चैतन्य महाप्रभु की, श्री श्री गौर निताय की, गौर भक्त वृंद की। अभी ड्रामा है तो मैं थोड़ा लेट हो गया, अभी ड्रामा देखकर उसके बाद सब भक्त प्रसाद लीजिए। थैंक यू वेरी मच। श्री गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की।